पृष्ठ संख्या 113, अध्याय 8, राग सारंग या वृंदावनी सारंग। राग सारंग अथवा वृंदावनी सारंग दोनों एक ही राग के नाम हैं। गंधार धैवत वर्जित यह औडव औडव जाति का राग है। इसमें ऋषभवादी तथा पंचम संवादी तथा दोनों निषाद का प्रयोग होता है। गायन समय दिन का द्वितीय प्रहर सर्वमान्य है। थाट काफी तथा रागांग रागों में यह एक प्रमुख रागांग राग है। स्वरूप इस प्रकार है। मंदिर नी सा रे म रे, रे म प कोमल नी प म रे, म प नी तार सा कोमल नी प म रे, रे म प कोमल नी म प, प म कड़ियुक्त रे म रे, म रे मंद्र नी सा। उपरोक्त राग स्वरूप को देखने से यह स्पष्ट है कि इसमें किसी अन्य राग का मिश्रण नहीं है, बल्कि काफी राग में गंधार धैवत वर्जित करने का परिणाम है। जिस भांति कल्याण और बिलावल में म निवर्जित करने से भूपाली और देसकार के मूल स्वरूप का आविर्भाव हो जाता है, इसी प्रकार यहाँ सारंग के लिए भी समझना चाहिए। उदाहरण के लिए काफी राग को देखिए। आरोह सारे कोमल ग म प ध नी तार सा, अवरोह तार सा कोमल नी ध प म कोमल ग रे सा। उपरोक्त आरोह अवरोह में गंधार धैवत को वर्जित करने से ऐसा होगा, यथा रे म प नी तार सा नी प म रे सा। यहाँ पे नी कोमल है। स्वर वर्जित के आधार पर राग बनाने की क्रिया कितना विलक्षण है कि तत्काल एक दूसरे अथवा महत्वपूर्ण रागांग राग की उत्पत्ति हो जाती है। इस क्रिया में वर्जित स्वर के साथ विश्रांति स्थल को पूर्ववत रखने से काफी राग अंग से सारंग राग का रागांग राग की स्थिति में आविर्भाव हो जाता है, अर्थात सारंग में काफी अंग अंतर्निहित है। यही कारण है कि सारंग राग को काफी थाट का राग माना जाता है, अर्थात थाट निर्धारण के लिए न्यास स्थान एवं रागांग को ध्यान में रखना परम आवश्यक है। अन्य रागांग रागों की भांति सारंग राग के भी सारंग वाचक स्वर समूह बहुत महत्वपूर्ण हैं, यथा मंद्र नीसा रे म प म रे या रे म प म रे। यह पूर्वांग और उत्तरांग के म प नी तार सा कोमल नी प, इन्हीं रागांग वाचक स्वर समूहों में भिन्न रागों का मिश्रण करने से सारंग के विविध प्रकार के रागों का निर्माण होता है, यथा कल्याण के मिश्रण से शुद्ध सारंग, मियां मल्हार का कुछ अंश मिलाने से मियां का सारंग, देश मिलाने से सामंत सारंग, बिलावल के मिश्रण से बढ़हंस सारंग इत्यादि। इसके अतिरिक्त स्वर वर्जित के आधार पर सारंग में केवल कोमल निषाद के प्रयोग से राग मधमाद सारंग का आविर्भाव होता है। पृष्ठ संख्या 114। प्रस्तुत राग को वृंदावनी सारंग कहने की परंपरा के संबंध में यह कथन संगीत विद्वानों में प्रचलित है कि वृंदावन के मंदिरों में संत संगीतज्ञों के द्वारा बहुत गाया गया। इस कारण ही सारंग राग को वृंदावनी सारंग कहने की परंपरा चली होगी। मेरे विचार से नाम संबंधी इस अनुमान में कुछ वास्तविकता की झलक अवश्य है। अन्य रागों में भी सारंग अंग का मिश्रण करके रागों के भिन्न भिन्न स्वरूप की रचना की गई है। कान्हड़ा अंग के राग तो सारंग अंग से बहुत ही प्रभावित हैं। सारंग अंग का म प नी तार सा कोमल नी प यह स्वर समूह तो कान्हड़ा अंग के रागों के उत्तरांग पर खास छाया हुआ है। खास करके कोमल नी प स्वर समूह तो बहुत ही मार्मिक है। एक दो कान्हड़े को छोड़कर लगभग सभी कान्हड़े के प्रकार में यह विद्यमान है, परंतु सारंग अंग के कोमल नी प और कान्हड़ा अंग के कोमल नी प में उच्चारण एवं लगाव भेद है। सारंग अंग के अवरोही निषाद को बिना किसी कड़ के उच्चारण किया जाता है, अर्थात कोमल नी प इस प्रकार, और कान्हड़ा अंग में यही स्वर पंचम के सहारे उच्चारण किया जाता है, यथा तार सा प कड़ियुक्त कोमल नी प। कान्हड़ा अंक के बहुत से रागों से आलाप में इस तथ्य को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा इस ज्ञान के अभाव में कान्हड़ा के उत्तरांग में सारंग का प्रभाव अधिक दिखेगा, खास करके जिन कान्हड़ों के प्रकार में धैवत वर्ज्य है, जैसे सूहा, नायकी, सुघरई, देवसाख इत्यादि। इन रागों में कोमल निषाद को कान्हड़ा अंग से ही उच्चारण करना चाहिए। सारंग अंग के रेमा प म रेसा इस स्वर समूह से भी खास करके सुघरई और देवसाख प्रभावित हैं, परंतु अंतर यह है कि सारंग अंग में यह स्वर समूह साव का श्रुति से गाया जाता है और ऋषभ का न्यास बहुत्व स्थान है। इसके विपरीत कान्हड़े के अंग में इस स्वर समूह का स्वभाव चंचल हो जाता है और ऋषभ अनाभ्यास के रूप में प्रयोग होता है। सारंग के उपरोक्त स्वर समूह का मल्हार अंग के कुछ रागों में भी प्रभाव दिखाई पड़ता है, जैसे मेघ मल्हार, सूर मल्हार इत्यादि। अर्थात जिस मल्हार में गंधार वर्ज्य होगा उसमें सारंग अंग की झांक तांक अवश्य हो जाएगी। इन मल्हारों में सारंग अंग के प्रभाव को संतुलित रखने के लिए ऋषभ और मध्यम के लगाव को ध्यान में रखना परम आवश्यक है। सारंग अंग में ऋषभ का न्यास बहुत्व और मध्यम का अनाभ्यास एवं लंघन दोनों ही प्रकार का अल्पत्व है। इसके विपरीत मल्हार अंग में ऋषभ अभ्यास बहुत्व के रूप में अर्थात अधिक से अधिक इस स्वर पर राग का विस्तार होता है मगर न्यास नहीं है। इसका कारण है कि मल्हार के अंग के रागों में जो सारे म कड़युक्त रे म कड़युक्त रे प स्वर संगति है, इसमें ऋषभ का प्रयोग मध्यम के सहारे किया जाता है, अर्थात म रे म कड़युक्त रे प, इस हेतु ऋषभ पर न्यास नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त म रे स्वर संगति का उच्चारण मींड युक्त एवं मध्यम वादी के रूप में न्यास युक्त होकर प्रयोग होता है, यथा म रे म कड़युक्त रे प म रे म। अभिप्राय यह है कि इन अनेक रागों में सारंग अंग का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रवेश है, परंतु सभी रागों का अपना एक भिन्न भिन्न नियम होता है। उसके आधार पर इन रागों के परस्पर स्वरूप को भिन्न रखने में कोई कठिनाई नहीं होती। ये बात दूसरी है कि प्रदर्शन करने वाले कलाकार ने यदि इन नियमों को आत्मसात नहीं कर रखा है तो वह रागों के सूक्ष्म भेद के ज्ञान से अनभिज्ञ है ही, श्रोता और भविष्य के साधकों को भी अपने प्रदर्शन का कुछ चमत्कार दिखाकर सही राग ज्ञान के मार्ग को अवरुद्ध करेगा। पृष्ठ संख्या 115, स्वरों का प्रयोग एवं स्थान। सर्वश्रेष्ठ स्वर षड्ज के अतिरिक्त ऋषभ न्यास बहुत्व के रूप में प्रयोग होता है, यथा मंद्र नीसा रे म रे प म रे रे म प म खड़ुक्त रे कोमल नी प म रे इत्यादि। मध्यम का इस राग में रे म प प म रे व प म कड़ुक्त रे म रे इस भांति अनाभ्यास एवं लंघन दोनों प्रकार का अल्पत्व है। पंचम स्वर रे म प प म कड़ुक्त रे म प कोमल नी प म प तार सा कोमल नी प रे म प कोमल नी प म प इत्यादि लगाव में पूर्ण न्यास बहुत्व के रूप में प्रयोग होता है। कोमल निषाद अनाभ्यास के रूप में और शुद्ध निषाद राग विस्तार में रे म प नी कोमल नी म प नी मंद्र नी सा रे म प नी तार सा कोमल नी प म प नी इस प्रकार अपन्यास के रूप में प्रयोग होता है। इस प्रकार यह राग प्राचीन होने पर भी श्रुति मधुर होने के कारण संगीत जगत में पूर्ववत ही अधिक से अधिक गाया बजाया जाता है। आरोह सा रे म प नी तार सा, अवरोह तार सा कोमल नी प म रे सा। मुख्य स्वर समूह रे म प म कड़युक्त रे मंद्र नी सा।